नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छू लो आसमान में आपसे रूबरू होंगे रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवं भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर श्री एमएन सिंह। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
हमारे संग आज है वन ऑफ द मोस्ट अपराइट ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट मिस्टर एम एन सिंह। नाम तो सबने सुना ही है, सब वाकिफ हैं इनके साथ और इनके अचीवमेंट्स ऑल्सो, लेकिन हम फिर भी इनसे पूछताछ करेंगे जो चीज़ें हमें नहीं पता है। इनके बिगेस्ट अचीवमेंट्स थे हैंडलिंग टेररिज्म एंड किलिंग्स बाय द गैंग्स एंड गैंगस्टर्स इन मुंबई। और आप बात करते हैं, वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो सिंह साहब।
थैंक यू।
ये हमारा प्रोग्राम वीकली प्रोग्राम है छू लो आसमान ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड FM। आप ये बताइए हमको, शुरुआत में आपका करियर करीब 35 साल था
जी हाँ,
जब से आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए और रिटायर करे
जी हाँ।
तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पुलिस का था या कोई आपके पेरेंट्स आपके फादर क्या करते थे?
नोबडी हमारे पुलिस हमारी फैमिली में कोई पुलिस में नहीं था। यस, ब्यूरोक्रेसी में थे। माई ग्रैंड फादर माई फादर तो ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड था, बिलोंग टू ए जमींदार फैमिली।
अच्छा,
यूपी से। लेकिन पुलिस में हमारे घर में कभी किसी ने काम नहीं किया।
तो आप कैसे चले गए पुलिस में? कोई घटना थी लाइफ में जो आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ ले गई?
नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है ये शुरू से हमारी इच्छा थी और फैमिली में भी सबकी इच्छा थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज के बारे में IAS IPS इनको बहुत अच्छा स्थान था समाज में और लोग उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते थे, खासकर नदर्न स्टेट्स में, यूपी बिहार पंजाब एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। तो पढ़ाई के बाद एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज में और IPS में आ गया।
तो आपने बनारस यूनिवर्सिटी में करा था आपका आई थिंक ग्रेजुएशन, इट मींस आप यूपी के हैं?
जी हाँ, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट का। बनारस यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई, इंटरमीडिएट तक यूपी कॉलेज है वहाँ बनारस वहाँ हुई और उसके बाद BSc और MSc मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से किया। MSc करने के बाद बनारस यूनिवर्सिटी में 2 साल में पढ़ाया भी, मैं फिजिक्स में मैंने MSc अच्छा। किया और 2 साल तक मैं वहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर था। और उसके बाद शुरू से ही हमारी इच्छा थी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की, UPSC एग्जामिनेशन दिया, IPS में सिलेक्शन हो गया, चला गया।
आपके इनिशियल ईयर्स जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में गए
जी,
तो नॉर्मली ये जो आप करते हैं एजुकेशन ऑन दैट पुलिस या IAS का सर्विस का, तो इससे आप स्ट्रेट अवे ऑफिसर लेवल पे चले जाते हैं?
देखिए, सिलेक्शन के बाद पहली ट्रेनिंग हमारी हुई मसूरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वहाँ सारे सर्विसेज IAS IPS IFS एंड इंडियन रेलवेज इंडियन इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू सर्विस एटसेट्रा सभी जाते हैं और कुछ महीने के बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स को जाते हैं। उसके बाद मैं माउंट आबू गया जहाँ पर नेशनल पुलिस एकेडमी थी जो आजकल हैदराबाद में है, और वहाँ 1 साल ट्रेनिंग किया और उसके बाद स्टेट में अलॉटमेंट हुआ, महाराष्ट्र स्टेट मिला, महाराष्ट्र आ गया।
महाराष्ट्र में ही आ गया?
हाँ, महाराष्ट्र आ गया।
तो अभी एक गाना हो जाए।
प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। We'll be right back. पर कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है पागल मोहे बना दिया कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे समा सो मैंने मन जलाया मिली पलकों की तब ये छाया कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने तब लगाया
हो सैया प्यारी चलता जा रे बैया डा रे हो तो है लगा लिया कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल
तो शुरू शुरुआत में आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे जब पुलिस डिपार्टमेंट में आए यहाँ पर महाराष्ट्र में एक दो साल थे इन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
हाँ जी हम महाराष्ट्र में भी एक साल ट्रेनिंग थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ महाराष्ट्र का अपना नासिक में ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है टू बिगिन विथ कोला डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा इंचार्ज ऑफ ए सब डिविजन उसके बाद प्रमोशन हुआ तो एसपी हुआ जिले का एसपी हुआ रत्नागिरी में एसपी था नागपुर का एसपी था औरंगाबाद का एसपी था उसके बाद पूना आया डिप्टी कमिश्नर होकर के फिर बंबई आया डिप्टी कमिश्नर होकर के और इस तरह से चलती रही जिंदगी पुलिस में
यहाँ पे गैंग वॉर्स बहुत चलते थे छोटे मोटे गैंग वॉर जो दुबई से फोन कर रहे हैं कहीं कहीं और से फोन कर रहे हैं और काफी लोगों की हत्या भी होती थी डिमांड्स भी होते थे अनफॉर्चुनेटली वो पीरियड में मैं भी उसमें फंस गया था पता नहीं कहां से मुझे बोलता
बहुत
था
फंसे थे, बहुत
कोई थे वो मैं नाम ही भूल गया दुबई से कॉल आते थे कि 1 करोड़ रुपया दे दो हम बोलते थे हमारे पास तो है ही नहीं ठीक है 50 लाख दे दो नहीं तो हम आपके बेटे को मार देंगे हमको पता है वो कहां पढ़ते हैं और आज भी आपका हम प्रोग्राम बता देते हैं आप कहां कहां गए थे तो बड़ा डेंजरस पीरियड था तो पुलिस कमिश्नर साहब ने हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर लगा दिया था दिन रात का वो 1-3 महीने का पीरियड तो वो डायरेक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो गैंग वॉर्स में क्या होता था तो आप ऐसा पुलिस कमिश्नर आपने क्या इसमें एक्सपीरियंस करा क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा जो गैंग वॉर्स का था इसको पूरा आपने खत्म करा
जी हाँ ये बात सही है कि 90s का जो दौर था वो गैंग वार बहुत ही एक्टिव था मुंबई शहर में, और बहुत सारी हत्याएं उन्होंने की, एक्सटॉर्शन किए और काफी लोगों को टेरराइज करके रखा था। सबसे बड़ी जो उन्होंने घटना की वो तो 1993 में जो बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, करीब करीब एक दर्जन जगहों पर ब्लास्ट हुए
थी, लेकिन
93 में। और आपको याद होगा कि 93 बॉम्बे ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे, करीब 800 लोग जख्मी हुए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। पूरे शहर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हुआ, एयर इंडिया में ब्लास्ट हुआ, फिर जवेरी बाजार में हुआ, सेना भवन के पास हुआ, फाइव स्टार होटल्स में हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, ऑल अलोंग यहाँ दक्षिण मुंबई से शुरू होकर के सबर्ब्स तक गया, करीब 12 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बॉम्बे में समुद्री मार्ग से बहुत सारे RDX लाए थे और वेपन्स ले आए थे, AK-47 राइफल्स ले आए थे। अच्छा। और बहुत सारी चीजें आई थी और हिंदुस्तान में कई जगह इस तरह के एक्सप्लोजन करने का उनका इरादा था।
अच्छा।
पहला उन्होंने बॉम्बे में हुआ क्योंकि वो बॉम्बे में जो राइट्स हुए थे 2-3 महीने पहले, बॉम्बे राइट्स 92-93 के, उसके उसमें उन्होंने किया था। तो वो पहला मौका था जब ये हुआ कि बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड जो है बहुत ही खतरनाक हो गया है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, इसलिए मुंबई की पुलिस उनके पीछे लगी। उस वक्त मैं ज्वाइंट कमिश्नर था और कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन वो जो सिलसिला शुरू हुआ पूरा 90s में, टिल द एंड ऑफ 90s एंड अर्ली पार्ट ऑफ 2000, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड वॉज ऑन ए रैम्पेज, और आप जैसे बहुत सारे लोगों को धमकियां आती थी। मैं जब CID का मुखिया था, पुणे में मेरी पोस्टिंग थी, उस वक्त बॉम्बे के दोस्त का फोन आते थे कि साहब बच्चे की शादी है, लड़की की शादी है, रिसेप्शन हम यहाँ रखें कि नहीं रखें। और मुझे ताजुब होता था सुन के, हमने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? बोले साहब फोन आ जाता है, लोग फ्लैट खरीदते थे तो फोन आ जाते थे, किसी ने कार खरीदा तो फोन आ जाते थे कि सेठ तुमने गाड़ी खरीदा है, सेठ तुमने फ्लैट खरीदा है, सेठ तुमने अपना फ्लैट बेचा है, उसमें अपना इतना दे दो।
सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता था इनको? ये
काफी बड़ी गैंग हो गई थी ये, और एक नहीं कई गैंग एक्टिव हो गए थे और फिल्म दुनिया में काफी उनका तहलका था। तो अल्टीमेटली इनको ठीक करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। महाराष्ट्र शासन ने एक नया कानून बनाया जिसको मकोका एक्ट कहते हैं, ताड़ा था लेकिन ताड़ा तो खत्म हो गया बाद में। तो महाराष्ट्र शासन ने एक नया कानून बनाया मकोका एक्ट, ताड़ा के आधार पर ही बनाया था, उसकी मदद से और बहुत सख्त कार्रवाई की गई उनके खिलाफ। और करीब लगातार 3 साल की कार्रवाई के बाद ये उस वक्त बहुत सारे पॉलिटिशियंस, सीनियर पॉलिटिशियंस मारे गए थे, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज किल्ड, कुछ MLAs मारे गए थे, कॉरपोरेटर्स तो कितने मारे गए थे, कितने फिल्म स्टार्स को मारे थे, अटैक हुआ था। तो इस तरह से काफी एक दहशत था और एक्सटॉर्शन के लिए, और आपस में गैंग की काफी राइवलरी चलती थी। उनको काबू में लाने के लिए बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ी थी, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, कई लोग मारे गए एनकाउंटर्स में, और मुंबई शांत हुआ। और लकली अभी तक मुंबई शांत है।
शांति है। एक गाना सुन ले।
पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। मधुभरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल।
सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
आ, अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए। चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। जिसका ख्याल भुलाना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए। चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
ओ इलो
आपके एक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर।
गवर्नमेंट का सपोर्ट और मीडिया का सपोर्ट पब्लिक का सपोर्ट क्योंकि सभी त्रस्त थे सभी परेशान थे।
तो आपको भी है ना फिर आते होंगे थ्रेट्स।
हाँ जी हाँ यस
आते ही होंगे। आप एक्शन तो आप ही ले रहे थे ना
यस
यस
यस यस यस।
मुझे याद है जिस दिनों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे हमारी ऑफिस उस टाइम होती थी वो क्रॉफर्ड मार्केट के बगल में। हम पहुंच ही रहे थे क्रॉफर्ड मार्केट एरिया में ही थे जब ये ब्लास्ट हुए और मेरे साथ में हमारा एक लंदन का एजेंट था मिस्टर बारक्रॉफ्ट वो आया हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया आया था और उसके सामने ही हो गए ब्लास्ट। वो तो सोचा इंडिया ही ऐसी है शाम को ही चला गया फ्लाइट ले।
That was very very terrifying. Nothing like
that. रोड पे ही थे कि सुन रहे थे यहाँ हो गया वहाँ हो गया।
हाँ बहुत लोग मारे गए थे उसमें। आपके स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में करीब 80 लोग मारे गए थे।
80 लोग मारे गए थे।
80 लोग मारे गए थे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अराउंड एंड इन द बिल्डिंग। 150 गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी।
स्टॉक बड़ा हुआ था मतलब। इसके बारे में आप और कुछ अगर बोलना चाहें तो बताइए क्योंकि ये तो आपका मेन वर्क था स्पेशली बॉम्ब ब्लास्ट थे। और कोई चीजें हैं जो जनरल पब्लिक को पता नहीं है लेकिन आपने हैंडल करा।
बॉम्बे पुलिस की एक इमेज रही है। बॉम्बे पुलिस को माना जाता है कि हिंदुस्तान के
बेस्ट है।
बेस्ट पुलिस
वर्ल्ड में भी बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस।
तो उसके इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ये तो सब जो हमने डील किया और हमारे अधिकारियों ने डील किया अंडरवर्ल्ड को टेररिस्ट को। सौभाग्य से जब तक मैं था सर्विस में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। 93 का अटैक हुआ वो भी बॉम्बे राइट्स के बैकग्राउंड में हुआ था। और मैं आया हुआ था मुझे आकर के बम्बई में एक महीना ही हुआ था और ये लास्ट हुए। उसके बाद अगले 10 साल तक हुआ नहीं क्योंकि हमने बहुत सख्त कार्रवाई की थी। बाद में 2003 से फिर शुरू हो गया। अच्छा। मेरे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म को कंप्लीट नके लगा के बैठा था। लेकिन अब बाद में जब इसका इंटरनेशनल लिंकेजेस हो गए टेररिज्म इज नॉट सिंपली ए लोकल फेनोमेनन तो इस तरह से उसको
टेररिज्म का कुछ
लेकिन उसके बाद जब 26/11 का अटैक हुआ ताज होटल एंड ओबराय होटल पे उसके बाद मुंबई पुलिस को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और काफी अभी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। तो पुलिस मशीनरी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमारे टाइम पर काफी हमने स्टेप्स उठाए थे जिसका फायदा आज हो रहा है। अभी तो ज्यादातर SLR राइफल्स देते हैं और AK-47 राइफल्स देते हैं। दे हैव बीन गिवन गुड वेपन्स। ट्रांसपोर्ट गाड़ियां अच्छी दी हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा दिया है। Abhi, cyber crime is more an important new phenomenon which is there. And the police machinery is gearing up to deal with this problem of cyber crime.
Very nice. Ek gana sun le.
सितारों का आंगन होगा रिम झिम बरसता सावन होगा झिल मिल सितारों का आंगन होगा रिम झिम बरसता सावन होगा ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा रिम झिम बरसता सावन
सपना
सितारों का आंगन होगा, जिम जिम बरसता सावन होगा, जिम जिम बरसता सावन होगा, सावन होगा।
आपने दो बुक्स भी ऑथर करी हैं और ऐसा सुनने में आता है कि अभी आपके जो बुक्स हैं बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री बिहाइंड इट एंड द नॉलेज बिहाइंड इट, ये ट्रेनिंग मैनुअल्स भी बन गई हैं पुलिस डिपार्टमेंट की।
मैंने देखिए कोई कमर्शियल एंगल से मैंने नहीं लिखा था, मैंने जो लिखा था वो डिपार्टमेंटल यूज के लिए। एक तो मैं जब गवर्नमेंट में था ज्वाइंट सेक्रेटरी तो मैंने लिखा था एक किताब ऑन गाइडलाइंस ऑन हाउ टू हैंडल कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, वो आज तक वो प्रिस्क्राइब्ड बुक है फॉर ऑल पुलिस ऑफिसर्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। तो वो किताब जो हमने लिखी थी वो तो 80s में लिखी थी, जो आज भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है एंड पुलिस ऑफिसर्स और मैजिस्ट्रेट्स उसको यूज करते हैं। दूसरा, जब मैं ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम था उस वक्त मैंने लिखा था ग्रोथ ऑफ अंडरवर्ल्ड इन बॉम्बे सिटी, उसमें पूरे गैंग की हिस्ट्री, गैंग वॉर और गैंग्स कैसे बने, कब बने, कौन कौन से गैंग्स हैं, तो वो एक रेफरेंस बुक हो गया जो पुलिस ऑफिसर्स, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन पुरानी भी होती गई तो अपडेट भी किया, हमारे बाद जो एक आए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने अपडेट किया, तो वो एक रेफरेंस बुक के तरीके पर है। और कोई किताब मैंने नहीं लिखी है, बट दीज आर टू इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक्स विच इज यूज्ड बाय सर्विंग ऑफिसर्स।
और आपके बारे में बताइए, अभी रिटायर हो गए उसके बाद भी आप एक्टिव रहते हैं, आप सारे टाइम टेलीविजन पे बुलाए जाते हैं तो आप बाकी बहुत पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत कमिश्नर्स थे
जी,
सिर्फ आप ही क्यों दिखते हैं वहां पर?
देखिए मेरा एक सिद्धांत रहा है कि पुलिस का काम ऐसा है, मेरी ओपिनियन से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मीडिया के सामने जाने में कतराते हैं, घबराते हैं या सोचते हैं कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस कमिश्नर का जॉब खास करके वो परसेप्शन को डील करने का है, काम तो नीचे के अधिकारी करते हैं और मैं ये मानता हूं कि नीचे के अधिकारियों को मिल गया कि अपना बॉस स्ट्रांग है और सपोर्ट करेगा तो काम बहुत बढ़िया करते हैं, चाहे अंडरवर्ल्ड का खात्मा करना हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, पब्लिक रिलेशन बनाना हो, दे डू वंडरफुल जॉब। माय जॉब इज टू डील विद द गवर्नमेंट, डील विद द मीडिया, डील विद द पब्लिक एंड कीप दीज इंपॉर्टेंट फोर्सेस ऑन माय साइड। तो यू नीड टू हैव ए पब्लिक प्रोफाइल। आपको मैं बताऊं, मैं जब कमिश्नर था तो एक खबर आई कि दिल्ली में कुरान जला दिया गया और दिल्ली में बहुत टेंशन हो गया, उसका रिएक्शन बंबई में हुआ।
अच्छा,
मैं करीब 4:30-5 बजे मंत्रालय से एक मीटिंग अटेंड करके अपने ऑफिस लौट रहा था जब मुझे मोबाइल पे मैसेज आया कि साहब कुरला में
लोग
कुछ मुसलमान जो हैं बहुत जमा हो गए थे और बड़ा नाराजगी है और कल ये लोग बहुत बड़ा उस एरिया में बंद रखेंगे और मोर्चा निकालेंगे अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ कुरान। तो मैंने कहा सारे ऑफिसर्स को बुलाओ 7 बजे हमारे ऑफिस में मीटिंग के लिए, वायरलेस में मैसेज चला जाता है। मैंने कहा सारे डिप्टी कमिश्नर्स, ज्वाइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स ऑल टू अटेंड। वो मीटिंग हमारी करीब 10 बजे तक चली रात को और मैंने कहा कि मैं उसके बाद 12 बजे रात को मैं खुद निकलूंगा राउंड पे और मैं कुरला भी आऊंगा, धारा भी जाऊंगा, जहां जहां सेंसिटिव एरिया से मैं आऊंगा।
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ ले परे,
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले,
जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।
गाड़ी से कह दो चले तेज मंजिल है तू,
तरह हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले सोच रही हो?
मैं?
हाँ हाँ
कुछ भी तो नहीं
बोलो ना कुछ तो
ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ
फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात
ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ
और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात
मैं 10 बजे निकला और घर जा रहा था तो नाना चुड़ासमा जो है आप जानते हैं प्रोमिनेंट सिटीजन है जो इस शहर के शरीफ भी रहे हैं उनका एक डिनर इनविटेशन था।
अच्छा
तो मैं सोचा था कि अब तो इसको अवॉइड कर देते हैं लेकिन मैं रास्ता उधर ही से था
तो 2 मिनट
तो मैंने कहा अच्छा चलो 2 मिनट चले जाते हैं। जब मैं वहां गया तो सब लोग मुझे कहे कि क्या बात है बहुत लेट हो गया आप लेट आए ये काफी लोग थे उनके तो मैंने कहा कि शहर में कुछ तनाव है और जरा उसमें व्यस्त था और मैं ये कम्युनिकेट कैसे करूं कि ये खबर ही गलत है।
टेलीविजन पे अनाउंस कर देना चाहिए था।
अब रात को 10 बज गया था कितने लोग टेलीविजन सुनेंगे। तो वहाँ एक मित्र ने कहा कि साहब आप जो है एक उर्दू पेपर है इनकलाब
फेमस है
हाँ फेमस है तो उसके ओनर वहीं पर थे तो उनसे आप क्यों नहीं बात कर लेते। खालिद अंसारी करके हैं
को तो मैं खुद ही
तो खालिद अंसारी एक फ्रेंड है वो भी उस पार्टी में थे तो हमने कहा कहाँ खालिद है अभी कहाँ मिलेंगे तो बोले यही तो है तो हमने खालिद को बुलाया और खालिद को मैंने बताया
उनका ब्लिट्स पेपर चलता था
हमको तो मुस्लिम कम्युनिटी से कम्युनिकेट करना था तो खालिद ने कहा कि मैं अभी बोल देता हूँ अपने एडिटर को। उन्होंने फोन लगाया और तुरंत कहा कि जो सिंह साहब कहते हैं वैसे लिखो और मैंने उनको बता दिया कि ये खबर गलत है तो आप इस तरह से फ्रंट पेज पर लिख दीजिए और ये वैसा हुआ। और उसके बाद मैं गया राउंड पे नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारे पढ़ लिया कि खबर ही गलत है।
तो आप उस दिन पहुंच गए वो पार्टी।
तो मैं इसको एम्फसाइज ये करना चाहता हूँ टू बी सोशल एंड टू बी इन कम्युनिकेशन विद द मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडलिंग योर जॉब। तो दैट्स एन एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ लोगों को कि आप पार्टी अटेंड करते हो सोशलाइजिंग इज नॉट ए बैड थिंग इफ इट इज अ प्रॉपर सोशलाइजिंग एंड बीइंग अवेलेबल टू द मीडिया इज नॉट ए बैड थिंग इन फैक्ट इट हेल्प्स यू। पुलिस कमिश्नर का जॉब है टू मेंटेन परसेप्शन एंड टू कीप द फोर्सेस व्हिच मे अगेंस्ट वर्क अगेंस्ट यू ऑन योर साइड इट हेल्प्स। चूंकि मैं उस वक्त बहुत ही पब्लिक में एज कमिश्नर भी मैं काफी आता था तो मीडिया के लोग अभी भी संबंध रखते हैं हमको बुलाते हैं ये उनकी मेहरबानी है कि अभी तक हमारे व्यूज को
आपकी वैल्यू दिखती है उसमें
हमारे व्यूज को इम्पोर्टेंस है। देते हैं ये उनका है
आपके
आई डोंट सीक एनी पब्लिसिटी मैं कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ कि मुझे भी बुलाओ लोग फोन करते हैं।
लगता नहीं हम क्या करें बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें।
लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कहे तो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें।
आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है
तो मेरी आदत है, मैं साफ साफ बोलता हूँ।
हाँ, थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कभी कभी कुछ जरा ज्यादा ही साफ बोलते हैं।
आई डोंट केयर,
लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि पैनल पे ही बैठे हुए लोग बड़े मतलब फेस बना लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि आजकल जो कमिश्नर्स हैं इनको भी थोड़ा ज्यादा आना चाहिए टीवी पे, थोड़ा कम्युनिकेट कर। आपको हम जानते हैं, आपका नाम याद रहता है, आज कौन कमिश्नर है हमको पता ही नहीं है। चेंज होते हैं तो भी पता नहीं चलता है। पब्लिक डजंट नो एंड आई एम एन अवेयर सिटीजन, येट आई डोंट नो देम।
एडवाइस करना मेरा काम नहीं है। हर आदमी अपना अपना तरीका ढूंढता है, अपना अपना करता है। मेरा ये अपना व्यू है कि पुलिस कमिश्नर को थोड़ा सा पब्लिक प्रोफाइल रखना उसके अच्छा काम के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये मेरा मानना है। और कोई सहमत हो ना हो अलग बात है।
तो रिटायर होने के बाद आपका भी एक्टिविटी क्या है, आप काय में बिजी रहते हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ आपने कंपनी खुद की शुरू करी है?
जी
हाँ, सुना था हमने की वही सिक्योरिटी लाइन में है।
नो 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 सर, इट्स नॉट। वो एक कंपनी है जिसको हमारे कुछ दोस्त के साथ मिलकर के हमने शुरू किया था। दैट इज डीलिंग इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स।
ओह अच्छा,
इट्स ए फाइनेंस कंपनी। नॉन परफॉर्मिंग मैं आ गया, इसलिए कुछ लोग हमारे पास आए और कहे कि यू जस्ट बिकम अवर चेयरमैन।
अच्छा,
तो हमने कहा कि भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में कि ये कंपनी बिजनेस क्या होता है, वो भी फाइनेंस का बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि एक नया कानून बनाया था भारत सरकार ने उस वक्त 2002 में, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट बनाया था बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इट वाज आई थॉट कि ये एक लीगल प्रोसेस है और उसमें मेरा कुछ उपयोग हो सकता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। और जो प्रमोटर्स बाकी लोग थे वो तो चले गए छोड़ करके, हम अभी भी हैं चेयरमैन एंड द न्यू पीपल हैव कम, अच्छे लोग हैं उसमें। और रिटायर्ड सेबी चेयरमैन इज वन ऑफ अ डायरेक्टर्स, LIC चेयरमैन इज अ डायरेक्टर, ऐसे कुछ रिजर्व बैंक से रिटायर हुए अधिकारी हैं। तो वो बिजनेस है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का।
सो ये है सिंह साहब, MN सिंह, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वन, आपने भी सुना और वैसे भी सब जन जानते हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सिंह साहब, आप टाइम निकाल के आए हमारे दर्शकों के लिए।
थैंक यू वेरी मच।
सोलो आसमान प्रोग्राम, ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड FM। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार के पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पगली।
हाय नैनो वाली तेरी।
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार।
दोस्तों 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवं भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर श्री एमएन सिंह से की गई चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन की बातचीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।